I think what flavor of these new Dunkin' Coconut Refreshers you get says a lot about you.
Really? What's it say about me?
Well, you got the refreshing golden peach because you're vibrant, fun, and positive.
Oh, what about me?
The bold purple pomegranate means you're vibrant, fun, and positive.
I take it I got this delicious pink strawberry because I'm vibrant, fun, and positive.
Yeah, it's a simple system, really.
Share the shine. Enjoy a medium Dunkin' Coconut Refresher for $3. Order ahead plus earn rewards. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer excludes classic Dunkin' Refreshers.
Studio Logic Box Originals. किस्सा कहानी में मैं निधि बासु आपके लिए लेकर आई हूं कुछ दिल छूने वाली कहानियां। आज सुनिए हेमलता महेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी करका मन का डार के का दूसरा और अंतिम भाग। वाचन है निधि बासु का। धीरे धीरे 11 बजे तक 300 परामर्शदाता महिलाएं आ गईं। तरह तरह की महंगी सस्ती साड़ियां, बनाव श्रृंगार, लिपस्टिक, चूड़ी कड़े, आलता पाजेब, बिछिया, परफ्यूम, आभूषणों के भी उतने ही प्रकार, जिससे उनकी हैसियत का पता चलता था। कुल मिलाकर ये कि सारी अपने अपने परिवेश की खुली किताब थी। मैं तो अब तक भी असमंजस से उबर नहीं पा रही थी कि परामर्शदाताओं की ऐसी उपस्थिति ने मुझे और भी अपनी भूमिका के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। लग रहा था किसी बौद्धिक गतिविधि में नहीं, रुतबे का प्रदर्शन करने वाली पार्टी में आ गई थी, जहां मैं बेचारी हो गई थी। बाकी सारी एक्सपर्ट्स तो नीति निर्धारक तत्व की तरह थी, उनकी सीधी भूमिका थी। आईपीएस देवयानी का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। अपनी पुलिसिया वर्दी और हैट के साथ उन्होंने मुझे बांध लिया था। कौसर ने संबोधन आरम्भ किया।
मेरे प्रिय साथियों, आज की इस कार्यशाला में मैं कौसर आप सबका इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने समय निकाला और इस कार्यक्रम में शरीक हुई। तो चलिए हम एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर लें। सबसे पहले मैं आप लोगों का परिचय अपनी 5 मेहमानों, अपने 5 एक्सपर्ट से कराना चाहती हूँ।
उसने बताया कि सुश्री देवयानी एक आईपीएस अधिकारी हैं, आशा किरण पत्रकार हैं, अर्पिता वकील हैं, सुदर्शना डॉक्टर हैं और सुवर्णा प्रोफेसर। हमने बारी बारी से सबका परिचय लिया और बातचीत शुरू हो गई। मैंने ध्यान दिया कि कौसर ने किसी भी एक्सपर्ट का उपनाम नहीं बताया था, पर बाकी परामर्शदाताओं ने अपना उपनाम जरूर बताया था। आईपीएस देवयानी ने अपनी बात रखी थी। सबसे पहले आईपीएस देवयानी ने कौसर को ऐसी कार्यशाला का आयोजन करने के लिए बधाई दी और सभी से सरकार के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। फिर पत्रकार समुदाय से अनुरोध किया कि किस तरह के मुद्दों को उठाना चाहिए। फिर उन्होंने अपील की कि उपस्थित परामर्शदाता अपने कुछ अनुभव सुनाएं, जिससे दिशा प्राप्त हो कि कैसे काम करना है और परामर्शदाता केंद्रों को किस तरह की सुविधाओं से लैस करना चाहिए और किस तरह के लोगों से हमें सहायता लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर साधना शर्मा, जो सबसे आखिरी में पहुंची थी, उन्होंने अपनी बात रखने की इजाजत मांगी। उन्होंने अपने ताज़ा तरीन अनुभव को शेयर करना चाहा। उन्होंने बताया कि एक किस्सा अभी अभी उनके केंद्र में आया था, जो गुटखा प्रसंग के नाम से जाना गया। हमारे साथ साथ वहां उपस्थित समस्त परामर्शदाता चौंक गईं।
गुटखा?
अभी उत्सुकता जगी ही थी कि देवयानी का मोबाइल बज उठा। बातचीत से पता चला कि कहीं कोई बलवा हो गया है और उन्हें तुरंत निकलना पड़ेगा। वे क्षमा मांगती, कार्यशाला को शुभकामना देती, आपाधापी में निकल गईं। उनके साथ पत्रकार आशा किरण भी निकल गईं। वे भला नई खबर कैसे छोड़ सकती थीं? दोनों ने कौसर से कहा कि वो कार्यशाला की रिपोर्ट उन्हें जरूर दे। उन्हें विदा किया गया और इधर साधना जी अनमनी होकर अपने केस के असर को कम नहीं होने देना चाहते हुए अपनी बात जारी रखे थी।
अरे हाँ भाई, हमारे लिए भी ये एकदम नया केस था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे सलाह दे। न दान दहेज का चक्कर, फिर भी बहू की ससुराल वालों से पटरी नहीं बैठ रही थी। वो तो कारोबारी परिवार था, कहिए तो पति से घर छोड़ते नहीं बन रहा था, वरना तो उफ, वो घर तुड़वा कर रहती।
गर्मी हो चली थी और हॉल के पंखे मरियल गति से घूम रहे थे। सारी महिलाएं अपने हाथों की फाइलों से खुद को हवा कर रही थी। सिर्फ साधना के बोलने का इंतजार कर रही थी। और साधना जी,
साधना जी अपने ही शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार का किस्सा बड़ी अदा के साथ अपने चेहरे पर भव्यता का भाव लाकर बता रही थी।
वो शहर के मशहूर कोएड कॉलेज का छात्र नेता था और उसका बहुत आतंक था। अनावश्यक उससे कोई भिड़ता भी नहीं था। उसे अपनी ही क्लास की एक लड़की से प्यार हो गया। प्यार तो प्यार होता है, कोई जोर जबरदस्ती तो चल नहीं सकती थी। उसने उसे रिझाने के लिए एक नया ही तरीका सोचा। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के साथ वे कॉलेज की कैंटीन में गए और चाय के बाद नेता ने उस लड़की को खुशबूदार गुटखा ऑफर किया, जिसे लड़की ने थोड़े नानुकुर के बाद ले लिया। लड़की को गुटखा अच्छा लगा। जब भी वो उससे मिलता उसे गुटखा जरूर देता। लड़का सच में लड़की से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर दोनों के ही घर वालों को इस शादी से आपत्ति थी। लड़के के दोस्तों ने उनकी आर्य समाज में शादी करवा दी। लड़की के घर वालों ने लड़की से रिश्ता तोड़ लिया और नेता नुमा लड़के के परिवार वाले अपने लड़के के आगे झुक गए। अकेला था, क्या करते।
जब शादी ही हो गई तो परेशानी कहाँ रह गई।
धमतरी से आई वनिता अपने को रोक न सकी। सबके साथ मेरी उत्सुकता भी बढ़ रही थी, पर हमें तो अपने सब्र का परिचय भी देना था। साधना जी कुछ 40 वर्ष के आसपास रही होंगी और उन्होंने जैसे सबको अपनी रहस्यात्मक शैली के मोहपाश में आबद्ध कर लिया था। पानी पीकर फिर उन्होंने कहना शुरू किया ही था कि डॉक्टर सुदर्शना की कॉल आ गई और उन्होंने इजाजत मांगी कि वे जाना चाहेंगी। वे चंपई गोरे रंग की एक खूबसूरत आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके नर्सिंग होम में कोई इमरजेंसी केस आ गया था, शायद डिलीवरी केस था, और वे वहीं से अपनी असिस्टेंट को समझाना शुरू कर रही थी। उनके जाने के बाद साधना ने फिर बताया,
शादी तो हो गई और परिवार के विरोध के बावजूद लड़की घर में आ गई। अब किस्सा तो ये था कि लड़की की बस एक ही मांग हो अपने पति से कि उसे गुटखा खाना है, और पति भी अपनी पत्नी की मांग पूरी करता। उनके कबर्ड में सिर्फ गुटखा ही होता, 24 घंटे वो गुटखा खाती रहती। फिर तो वो प्रेग्नेंट भी हो गई, पर उसकी गुटखा खाने की आदत बढ़ती ही चली गई। डॉक्टर ने उसे गुटखा खाने से मना कर दिया और घर वालों ने उस पर सख्ती करनी शुरू कर दी, पर वो किसी भी तरह से गुटके का इंतजाम करती।
साधना जी की बातों का असर हो रहा था और बड़ी शिद्दत से हो रहा था, और वो भी पूरी महारत के साथ किस्सा गो की तरह बयान कर रही थी।
काम वाली बाइयां धोबी घर के नौकर चाकर किसी को भी उस चुपके से पैसे दे देती और गुटका मंगवा लेती, पर जैसे ही घर वालों को इस चोरी छुपे गुटका मंगवाने का पता चला तो सबने उसे खूब बुरा भला कहा और सारे नौकरों को उससे बात नहीं करने के लिए धमकाया। एक दिन पड़ोस की कामवाली ने बाहर से आवाज देना शुरू किया। सास बाहर निकली तो उसने उसके हवाले एक टोकरा गुटखा कर दिया। वो हैरान रह गई कि गुटखा मंगवाया किसने। पूछने पर कामवाली ने बताया कि उनकी बहू ने ऊपर छत पर चढ़कर पीछे की दीवार की जाली में से 500 रुपए का नोट एक चुटके की तरह फेंका था और चुपके से उसे गुटखा लेकर दोपहर में आने के लिए बोला था। सास ने उसे बहुत डांटा कि क्या वो सबका काम ऐसे ही कर देती है, तो उसने बताया कि उसे बहू ने इस काम के लिए 100 रुपए अलग से दिए थे।
साधना जी फिर अपनी बातों का असर देखने के लिए रुकी। उन्होंने पाया कि कमरे में उनकी आवाज के अलावा और कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सिवाय पंखों की घर घर के। अब तो जैसे उनके चेहरे पर एक तेज छा गया था, फिर अब किसी के भीतर सब्र भी नहीं रह गया था। सब किस्से का अंजाम जानने को ललायत थी।
अब तो उसने बहू को ना केवल खरी खोटी सुनाई बल्कि अब तो मारपीट भी शुरू हो गई। जब बहू हमारे केंद्र में आई ना तो दोनों पक्षों को सुनकर लगा कि बहू की गलती है।
उन्होंने असर देखकर कहना जारी रखा, यही किस्सा था गुटका वाला। वे अब चैन की सांस ले रही थी। अब तो कमरे में जैसे हंगामा ही मच गया। सारी महिलाएं बगैर किसी अनुशासन बतियाने लगी। कौसर ने किसी तरह सबको चुप कराया ही था कि मैंने पूछ लिया, क्या उस वक्त वहां कोई डॉक्टर थी।
नहीं, अरे डॉक्टर लोग तो अपने पेशेंट में ही उलझे रहते हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत होती है इन सब कामों की। अभी भी देखो है कोई यहाँ। एक साथ ही साधना जी ने अपनी महत्ता और बाकियों को काहिल बता दिया।
अच्छा तो क्या आप लोगों ने उसके परिवार वालों को उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी? मैंने बिना रुके पूछा।
अब डॉक्टर क्या करता, डॉक्टर भी तो वही बताता जो हमने समझाया। अरे भाई हम सब ने तो मिलकर समझाया कि प्रेगनेंसी में नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे उसका ही नहीं उसकी होने वाली संतान का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। पर वो थी कि सुनने का नाम ही नहीं लेती थी।
फिर लगा कि एक केस पर कमेंट देना शायद ज्यादा ठीक नहीं होगा, और भी लोगों को सुनना बेहतर होगा, ये सोचकर मैं चुप रह गई। दुर्ग से आई अपर्णा वाजपेयी ने साधना से पूछा,
ये तो ठीक है कि आप परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर नाम नहीं लेना चाह रही हैं, पर ये तो बताइए कि लड़का किस जाति का है?
ब्राह्मण है। और लड़की?
बिलासपुर की नमिता गुप्ता ने पूछा।
अरे यही तो रोना है, वो यहाँ की ओबीसी है। तभी तो
मुझे तो इस बात पर ही आपत्ति थी कि जाति पर आधारित बातें हों, पर मैं वहां ऐसे थी जैसे नक्कार खाने में तूती। वकील साहिबा भी मुंह दबाकर हंसने लगी थी। एकाएक जैसे सभा में जोश तारी हो गया।
अरे ये तो ऐसे ही होती हैं,
छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाली, इनका ना शास्त्र ना धर्म,
बस साड़ी बदले जैसे पति बदल लेती हैं।
अरे हम तो जन्म जन्मांतर के बंधन की बात करते हैं और ये लोग एक ही रिश्ते को नहीं निभा पाती हैं।
अब तो जितने मुंह उतनी बातें होने लगी, उन्हें रोक पाना कठिन हो गया था। मैं कौसर की तरफ देखने लगी। मेरे चेहरे पर छाई नागवारी उसने पढ़ ली और फिर जोर जोर से ताली बजाकर सबको शांत किया। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ उनसे पूछा कि आखिर वे ऐसा क्यों मानती हैं और सामाजिक स्तर पर क्या सुधार चाहती हैं। अनुपमा सहाय ने उत्तर देते हुए कहा,
यहाँ की सबसे बड़ी समस्या चूड़ी पहनने की है। औरतें और आदमी दोनों ही बड़ी आसानी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। बच्चे भी बड़े होने तक सौतेले पिता के पास बड़े हो जाते हैं, और पता नहीं कैसा इनका समाज है, बड़े होने के बाद पहले पिता के पास चले भी जाते और पहला पिता उन्हें स्वीकार भी कर लेता है।
अनुपमा जी के चेहरे पर जैसे घृणा टपक रही थी। उनकी इसी बात के सिरे को पकड़कर महासमुंद से आई शशि मिश्रा ने जोड़ा,
हाँ यही तो कारण है कि इनके यहाँ की लड़कियाँ ससुराल में नहीं निभा पाती हैं। कैसे वो ब्राह्मण परिवार इस लड़की को बर्दाश्त कर रहा होगा।
कुल मिलाकर सबकी बातों से हमें अंदाज तो हो ही गया था कि इन परामर्शदाताओं की मानसिकता किस तरह की है और वे किस तरह से परामर्श केंद्र में अपने कर्तव्यों को निभा रही होंगी। अब कौसर ने वकील अर्पिता से निवेदन किया कि ऐसे मसले पर वे कुछ प्रकाश डालें। अर्पिता ने साधना जी के समर्थन में ही अपनी बातें परिष्कृत ढंग से रखी और कुछ धाराओं की चर्चा की। अब कौसर ने मुझसे संबोधन के लिए आग्रह किया। मेरे भीतर न जाने क्यों एक डर सा था कि ये लोग मेरी बातों पर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। फिर भी मैंने सोचा कि अपनी बात तो कहनी ही चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई भाषण नहीं देना चाहती। मेरे भीतर कुछ जिज्ञासाएं जरूर पैदा हो गई हैं उनकी बातों को सुनकर, तो मैं उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहूंगी। वे लोग खुशी खुशी तैयार हो गईं। मैंने साधना जी से पुनः जानना चाहा कि उस गुटके वाली बहू की शिकायत क्या थी। उन्होंने मुंह बिचकाते हुए कहा,
ये देखा शिकायत करेही, कुछ कहे बर रहतीस ता तो। वो बोलती थी कि मुझे मेरे घर के लोग गुटका खाने नहीं देते, मेरे ऊपर सख्ती करते हैं। माँ बाप तो छूट ही चुके हैं, अब पति भी ध्यान नहीं देता। कोई इनको समझाए कि मैं गुटके के बगैर नहीं रह सकती, बस वह एक ही रट लगाए रहती कि उसे गुटका खाना है।
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ एडिक्ट होने जैसा मसला है और उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की जरूरत है? मैंने पूछा। साधना जी के साथ अन्य परामर्शदाता भी निरुत्तर हो गईं। अब तो मैंने कहना जारी रखा, देखिए हम सब जो अपने रीति रिवाज सामाजिकता के साथ बड़े होते हैं, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं खुद को ही अच्छा मानने लगते हैं।
ये आप क्या कह रही हैं?
अच्छा तो सुनिए, दहेज अपने समाज की कितनी बड़ी समस्या है और कितनी लड़कियां इसका शिकार होती हैं। क्या ऐसे रिवाज के खिलाफ सामाजिक तौर पर हमारे यहाँ कोई कठोर कदम उठाया गया है? मेरा तीर निशाने पर लगा था। औरत रो रो कर घुट घुट कर अपने ससुराल से अपनी अर्थी निकाले, उससे बेहतर नहीं कि वह अपने पति से अलग और कुछ नहीं तो कम से कम सम्मान पूर्वक अपना जीवन संचालित करे? और फिर जिस समाज की आप बात कर रही हैं, मजाक बना रही हैं, वहाँ कितने किस्से दहेज के बनते हैं? इनका सामाजिक गठन बहुत मजबूत है, इसलिए औरतों को अपनी जान बाकी समाज की तुलना में बहुत कम गंवानी पड़ती है। जीवन का मोल ये लोग जानते हैं, इसलिए स्वतंत्रता देते हैं। हमें उन्हें संतुलित दृष्टिकोण से देखना होगा। परामर्शदाताओं के चेहरों पर थोड़ी थोड़ी सहमति के भाव थे। मैंने फिर कहा, गुटका वाली उस लड़की को ड्रग एडिक्ट की तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, प्यार की जरूरत थी, उसके माँ बाप की जगह कोई भर सके ऐसे दुलार की आवश्यकता थी। पर पता नहीं अब क्या होगा, वह हीन ग्रंथि का शिकार हो सकती है, इसलिए हमें किसी भी केस पर काम करते हुए जाति और धर्म के आधार पर रणनीतियां नहीं तय करना चाहिए। हमेशा जो पीड़ित है उसकी परिस्थितियों के अनुसार परामर्श देना चाहिए। तब जाकर वकील साहिबा ने मेरी बातों का समर्थन किया और समय की तरफ सबका ध्यान खींचा। शाम के 5 बज चले थे। कार्यशाला की समाप्ति। सुदूर जगदलपुर से आई विद्या त्रिपाठी ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में यह स्वीकार किया कि उन्हें जाति धर्म से हटकर समस्याओं को देखना चाहिए और यह भी अपेक्षा की कि परामर्शदाताओं की समिति में जिन विशेषज्ञों को नामांकित करते हैं वे वहां जरूर उपस्थित हों। कौसर ने यह नोट किया और सबका धन्यवाद करते हुए कार्यशाला के समापन की घोषणा की। सभी को चाय दी गई। अब तो एक तरह की अनौपचारिकता पसर गई थी। साधना जी चाय पीती हुई आईं और मुझसे मेरा पता मांगा। मैंने उनकी डायरी में अपना नाम लिखा, डॉक्टर सुवर्णा महेशकर। साधना जी ने झांकते हुए पूछा, महेशकर यानी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, तभी तो बड़ी वैचारिकता है आप में।
नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैंने उन्हें टोका।
तो
साधना जी के चेहरे पर सवालों के जाल थे जिन्हें देखकर मैं फिर सकुचा गई। इतना सब पढ़ने लिखने और सोचने के बाद भी न जाने क्यों किसी के द्वारा ये सवाल करते ही जैसे कोई अनजाने अपराध का सा एहसास होता है। मैंने धीरे से किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती हूँ। बिना एक क्षण गंवाए साधना जी ने मेरे हाथों से अपनी डायरी ली और मेरे सामने बैठी वकील साहिबा के साथ जाकर बैठ गई। आप सुन रहे थे हेमलता महेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी करका मन का डार के का दूसरा और अंतिम भाग। वाचन था निधि बासु का।
This message is sponsored by Amazon.
I want to get back to kissing the cheeks of my grandbabies, making Sunday dinner with a house full of family and lots of laughs.
COVID-19 has changed how we live and how we feel, but now there are vaccines. It's okay to have questions. Now get the facts. Visit GetVaccineAnswers.org so you can make an informed decision about COVID-19 vaccines. It's up to you. Brought to you by the Ad Council.